सभी सुनने वालों को बहुत बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से, मोहम्मद आतिफ को प्रोग्राम है आतिफ ऑन सनराइज। और साहिवाल में हमारे सभी सुनने वाले जो कि हमें सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट्स पर 96 FM 96 साहिवाल की ट्रांसमिशन। आप तमाम लोगों के मिजाज अच्छे होंगे इस उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आतिफ इस प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप सुन सकते हैं अब से लेकर रात के 10 बजे तक। और साहिवाल में आज हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं साहिवाल की बड़ी जानी पहचानी एफएम सनराइज की आवाज नजमा। नजमा, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू?
अस्सलाम वालेकुम, मतलब आई एम फाइन एंड हाउ यू आर, एंड बाकी आपके वहाँ के लोग जो हैं वो उनकी क्या हालात हैं ये यकीनन आप बेहतर बता सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और हमारी तरफ से वहाँ के तमाम रहने वालों को बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार।
शुक्रिया नजमा, आपका सलाम और प्यार पहुंच गया। और आपने यहाँ के लोगों के हालात पूछे हैं तो हर किसी ने कम से कम भी नहीं तो 4-4 लेयर्स और 5-5 लेयर्स कपड़ों की जरूर पहन रखी हैं, क्योंकि यहाँ पर गुज़श्ता 3-4 दिनों से मौसम इतना शदीद सर्द है और इस कदर तेज हवा चल रही है कि जब हम उस सर्दी में हवा की शिद्दत को ऐड करते हैं तो माइनस मतलब वो जो करंट टेम्परेचर होता है उसकी फील तकरीबन उससे 7 या 8 डिग्री कम हो जाती है। तो बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स के साथ और यू नो जितनी प्रोटेक्शन पहनी जा सकती है सर्दी से बचने के लिए, उस तमाम तर प्रोटेक्शन के साथ यहाँ के लोग इन सर्दियों का लुत्फ उठा रहे हैं
और मुकाबला कर रहे हैं
मुकाबला भी कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये सर्दी की जो लहर है ये जल्द ही टल जाए। हम लोग तो बच गए हैं, लेकिन आसपास की जो रियासतें हैं उनमें कुछ जगहों पर 2 से 3 फुट बर्फ पड़ी है पिछले एक हफ्ते के दौरान। तो ये यकीनन खासा चैलेंजिंग हो जाता है जब आप सियाहती मोड में नहीं रहते बल्कि आपको रोजाना 2-3 फुट बर्फ के जो पाइल्स होते हैं उनसे निमटना पड़ता है। अपने ड्राइववेज खुद साफ करने पड़ते हैं, साइड वॉक्स जो घरों के आगे होती हैं उनको खुद साफ करना पड़ता है, और फिर इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है कि जो बर्फ पड़ी होती है या जो बर्फ थोड़ी बहुत टेम्परेचर के ऊपर जाने की वजह से पिघलती है, जो ही टेम्परेचर नीचे आता है 0 डिग्री से तो वो बर्फ जो पिघल रही होती है वो आइस में तब्दील हो जाती है और स्लिपरी कंडीशंस में चेंज हो जाती है। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग। बहरहाल क्या आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने प्रोग्राम खोल दी सर्दी दा ते बर्फ दा रोना पा देता है, इतनी गर्मी पै रही है पूरी दुनिया च। आज वैसे हमारा आज का टॉपिक भी यही है नजमा।
जी बिल्कुल आतिफ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग खुश होते हैं जब हम बर्फ की बात करते हैं या ठंड की बात करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ आपको पता है सर्दी जो बड़े शॉर्ट पीरियड बहुत कम अरसे के लिए आती है, और वो जो एक पीक की सर्दी होती है और उसके बाद फिर अब जैसे कि यहाँ का मौसम जो है मोतदिल हो चुका है और यहाँ पर अब सर्दी की वो शिद्दत नहीं रही। हाँ, अलबत्ता शुमाली इलाका जात में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अभी भी सर्दी की वही पोजिशन है, वहां पर स्नोफॉलिंग भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, और लोग जो है वो सैर सियाहत के लिए गए भी थे छुट्टियों में और जा भी रहे हैं, तो मौसम ठंडे मौसम को लोग जो हैं यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए उसको सुनना भी अच्छा लगता है।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं जिसमें लोग ठंडे मौसम का मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ सियाहती मकामात पे जाकर। वैसे पाकिस्तान में जो ठंडे या सर्दियों के हवाले से कुछ मशहूर सियाहती मकामात हैं उनमें से एक तो क्या कहते हैं मलका कोसार मरी का मकाम है, वहां पर बहुत ज्यादा सयाह जाते हैं। उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं कागान नारान सवात का जो एरिया है।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने टॉपिक के बारे में बताया ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात करनी है। लिसनर, आज हमारे प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात करेंगे। दुनिया में जो है वो वार्मिंग, और मतलब इसका तो खैर पता ही है सबको, इसका तर्जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जो इस वक्त हालात हैं और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर हम ग्लोबल वार्मिंग में बात करेंगे। और हमारा साथ रहेगा जी आप के साथ अब से लेकर ठीक 10 बजे तक।
और ग्लोबल वार्मिंग से नजमा मुराद सिर्फ और सिर्फ गर्म होता मौसम नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग से मुराद मौसम की शिद्दत है, वो गर्मियों में भी है और सर्दियों में भी। आपने देखा ना कि एकदम से गुज़िश्ता 5 से 8 साल में अगर हम मौसम का मवाजना करें तो मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि शदीद गर्मी के बाद शदीद सर्दी पड़ जाती है। अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। बारिशें आपने, हमने ये पाकिस्तान में भी देखा है नजमा, के मॉनसून का दौरानिया बदलता जा रहा है। हमें पहले जब हम छोटे थे तो हमें पता होता था कि मॉनसून की बारिशें कब शुरू होती हैं और कब खत्म होती हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया। बारिशें जल्दी शुरू हो जाती हैं, कुछ कई साल बीच में ऐसा है जिसमें बारिशें बहुत देर तक शुरू नहीं हो सकी, बारिशों की शिद्दत ज्यादा हो गई, और पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 साल में 3 बड़े सैलाब आए हैं। तो ये सब कुछ मौसम की ये बदलती सूरत हाल की वजह से है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये मौसम जो है इसकी तब्दीली और इसमें जो है सबसे बड़ा हाथ जो है वो यकीनन ग्लोबल वार्मिंग है, और इसी के हवाले से हम बात करेंगे। और यकीनन आतिफ, आपके पास जैसा कि हमें प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक पैकेज भी है जो कि हमने अपने लिसनर्स को सुनाना है, और उससे पहले एक गीत मुझे पता चला है कि आपके पास बहुत खूबसूरत सा जो आप सुनाने वाले हैं हमारे लिसनर्स को।
जी हाँ बिल्कुल, गाने तो हमने प्रोग्राम में शामिल करने होते ही हैं, और कोशिश हम ये करते हैं कि हम गाने कम से कम भी इसे 1 घंटे के दौरान 3 से 4 गाने अपने सुनने वालों के लिए जरूर प्ले कर दें। तो मेरा ख्याल है बगैर कोई वक्त जाया किए हम पहला गाना चलाते हैं, और शहजाद ने आज चूंकि गानों की प्लेलिस्ट बनाई है इसलिए शहजाद मुझे बताएंगे कि उनको कौन सा गाना आज पहले चलाना है। और ये गाना शहजाद मुझे बता रहे हैं कि ये गाना है दिलदारियां। तो आइए ये गाना सुनते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम सनराइज 96 की आवाज अपने रेडियो सेट्स पर और इंटरनेट पर urduvoa.com पर आप तक ये आवाज पहुंच रही है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस गाने के बाद।
बड़ा समझ आया तेनू, समझ न आया का तू कर दाए दिलदारी, गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां। बड़ा समझ आया तेनू, समझ न आया का तू कर दाए दिलदारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां। पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां। पुंगरे वेले मोहब्बतां दी तां रखिए वाड़ा लाके, तेरे जय ना दान दिलावे जांदे जड़ा कटाके। बन ना दीवाना दिला घूमदा जमाना दिला हथां विच लैके आरियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिला वे कानू ला लिया तू यारियां। रोना पैंदा लुक लुक ठोटो के बूहे बारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां, ला लिया तू यारियां।
جی گانا آپ نے سنا, لالیاں کیوں یاریاں تیرے تھے گلائے سنو. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اور ایف ایم سن رائز 96 کی آواز. یہ مشترکہ کوشش آپ تک پہنچتی ہے ہر منگل اور بدھ کی رات 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک پاکستان کے وقت کے مطابق, اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو دوبارہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. یعنی آج جو پروگرام آپ سن رہے ہیں یہ پاکستان میں 6 سے 7 بجے تک ری براڈ کاسٹ ہوگا وائس آف امریکہ اردو سروس کی ریڈیو فریکوینسی میڈیم ویو 972 MHz پر.
جی بالکل لسنر, جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پروگرام آپ ریپیٹ بھی سن سکتے ہیں اور دوبارہ سننا چاہیں تو وہ بھی سن سکتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اپنے ٹاپک کے حوالے سے بھی, تو اس ٹاپک پہ آپ بھی بات چیت کر سکتے ہیں, آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. ایف ایم سن رائز ساہیوال کے اسٹوڈیو میں ہم آپ سب کو ویلکم کریں گے اور آپ کی جو گفتگو ہوگی اس کو بھی ہم ان شاء اللہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اور جو ہم آپ سے بات چیت کریں گے وہ ضرور سنیے گا, کیونکہ ہمارے پروگرام میں جب بھی کوئی موضوع ہم لے کر آتے ہیں تو وہ سارا جو ہمارا ایک نالج ہوتا ہے اس میں, جو اس ٹاپک میں, اور اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا پیکیج ہوتا ہے جس کو کہ پروگرام سننے کا ان کو کچھ فائدہ بھی ہو, نہ کہ صرف گانے سنیں اور بس جی ٹیون اپ کیا اور اس کے بعد آف کر دیا, تو ایسا نہیں ہے. تو عاطف, آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے پاس ایک پیکیج بھی ہے, تو ابھی پیکیج چلانے میں ہمارے پاس کتنا ٹائم
جی ہے؟ ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں پیکیج کے چلانے میں, ہم 3 منٹ میں پیکیج چلائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کچھ جیسا کہ ہم اپنے سننے والوں کو بتا چکے ہیں جی کہ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے والے ہیں گلوبل وارمنگ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گلوبل وارمنگ کے فیکٹس ایسے ہیں جو کہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, وہ بھی ہم بیان کریں گے. لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ذرا ایک کنسٹرکٹیو بات کی جائے کہ ہم اپنی سطح پر انڈیویجول لیولز پر اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں, یا اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہم اپنے گھروں کو, محلوں کو, اسکولوں کو, آفیسز کو, یونیورسٹیز کو, کالجز کو, باقی ایسے علاقے جو ہماری دسترس میں ہیں ان کو انوائرمنٹ فرینڈلی کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنا رول جتنا بھی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے وہ اتنا کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے ماحول کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں.
جی بالکل آپ نے صحیح کہا عاطف, یقیناً جو انفرادی کوشش ہوتی ہے کسی بھی تبدیلی کے لیے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. کوئی بھی آپ بڑی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اپنے علاقے میں, اپنے ارد گرد کے ماحول میں, اپنے جو ہے حلقہ احباب میں یا اپنے ملک میں, تو اس کے لیے انفرادی کوشش سب سے اہم ہے. کہتے ہیں کہ پہلا قدم اٹھائیں گے تو منزل کی جانب جائیں گے, تو یقیناً ہماری جو انفرادی کوشش ایز اے ہیومن بینگ, ہم جو سوچتے ہیں اور جو ہمیں کرنا چاہیے, ہم اگر اس پہ تھوڑی سی جو ہے عمل درآمد بھی کر لیں تو یقیناً ہم بہت ساری چیزوں سے, بہت سارے مسائل سے نبردست ہو سکتے ہیں اور ان کے حل بھی نکالے جا سکتے ہیں.
بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں نجمہ, اور یہ حل نکالنے کے لیے ہمیں خود ہی جدوجہد, خود ہی محنت کرنا ہوگی, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہر کسی کو کنٹریبیوٹ کر کے اس مسئلے کے جو کانسیکوینسز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خود ہی اچھا بنائیں. کوشش کریں کہ چاہے کوئی چھوٹا سا پودا بھی لگا سکتے ہو نا آپ اپنے گھر کے آس پاس, اپنے گھر میں, اپنے آفس کے ڈیسک پر ایک چھوٹا سا پودا رکھ لیں. یو نو گرینری ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلا وجہ کا ہم فوسل فیولز برن کرتے ہیں, جیسے کوئلہ جلاتے ہیں, گیس جلاتے ہیں, پیٹرول کے ذریعے جو ہم ایندھن جنریٹ کرتے ہیں یا حرارت یا انرجی جنریٹ کرتے ہیں, اس کو جس حد تک کم کر سکیں اس پر کنٹرول کرنے کی جی اوائڈ کریں, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ گزشتہ تقریباً 20 سال میں نجمہ جو ہمارے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے اس میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم گزشتہ 20 سال کا کمپیریزن اس سے پچھلی صدی کے مطابق کریں تو وہ تقریباً اس کے قریب قریب آ جاتا ہے. تو یعنی جب سے ہم یہ دنیا انڈسٹریلائزیشن کے اس میں آئی ہے تب سے لے کر 1980 تک جتنا اضافہ ہوا تھا کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں ہوا کے اندر, اس سے ڈبل اضافہ ہم اس کے بعد سے لے کر اب تک کر چکے ہیں.
کر چکے ہیں اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو خدا نخواستہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ جب ہمارے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گی. اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہمارے بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو اس میں انوالو ہیں اور جن کی وجہ سے یہ سارا جو ہے کام جو ہو رہا ہے یا جس میں جو ہے اوزون کی لہر جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سارا اچھا یہاں پر عاطف ایک تو ابھی چونکہ ہم نے پیکج چلانا اور اس کے بعد تفصیلاً میں اس پہ بات کروں گی کہ ہمارے یہاں یعنی پاکستان میں جو کالونی سسٹم بننا شروع ہو گیا اور ایگریکلچر ایریا آپ کو پتا ہے ساہیوال کا بھی بہت بڑا نام ہے اور زرعی علاقہ ہے تو یہاں پر بھی جتنے کھیت کھلیان تھے ان کو کاٹ کر ان کو ختم کر کے یہاں پر کالونیز ڈیولپ کر دی گئی اور وہ بھرمار ہو رہی ہے کہ وہ انسٹالمنٹ پہ کالونیز بنا بنا کے دیتے جا رہے ہیں اور جس کے چکر میں یہاں پر جو زراعت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور گرینری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک بات ہے, اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے اور باقی اور بہت سارے اسپیکٹس ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ایف ایم 96 ساہیوال وائس آف امریکہ سن رائز ود عاطف آپ سن رہے ہیں اور یہ پروگرام آپ سنتے رہیں گے جی 10 بجے.
جی ہاں بالکل, اور آپ نے بہت ہی دو اہم پوائنٹس کی طرف نجمہ اشارہ دیا ہے جن میں ایک ہے زراعت. اگر ہماری زراعت کو نقصان پہنچتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے وہ ہے فوڈ انسیکیورٹی. ہمارے پاس جو کھانے کی بنیادی چیزیں ہیں جس میں گندم ہے, چاول ہے اور گنے کی فصل ہے, یہ فصلوں کا فقدان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب فوڈ انسیکیورٹی آ جائے گی تو پھر بہت سے اور بڑے مسائل جنم لیں گے. اور آپ نے جو ذکر کیا کہ زرعی زمین کو ہاؤسنگ کالونیز میں تبدیل کیا جا رہا ہے, پاکستان کی آبادی چونکہ آفیشیل نمبرز تو ہمارے پاس پاکستان کے موجود نہیں ہیں کیونکہ مردم شماری ہوئے بہت طویل عرصہ گزر گیا ہے, لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق نجمہ پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے.
جی بالکل, اس سے تجاوز کر چکی ہے 20 سے اب تجاوز کر چکی ہے.
جی 20 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. یہ میرے ہی ہوش کی بات ہے کہ ہم سنتے تھے کہ پاکستان کی کل آبادی 14 کروڑ ہے, پھر 15 کروڑ ہوئی, پھر 16 کروڑ ہوئی, پھر 18 کروڑ ہوئی, پھر 19 کروڑ ہوئی اور اب 20 کروڑ سے زیادہ ہے.
ہمارے ہی ہوش میں یہ 20 سے اوپر ہو گئی.
اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید کوئی 20-25 سال کی زندگی دے دی تو یہ 40 کروڑ ہو جائے گی.
آبادی تو خیر وہ اس سلسلے سے بڑھنا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کے لیے انتظامات کرنا, اس کے لیے جو ہے اپنی کنٹری کو, اپنی جو آپ کی جو لینڈ ہے اس کو ریڈی کرنا اور وہاں وسائل کا جو پیدا کرنا ہے وہ سب سے اہم بات ہے.
جی ہاں, اس کے لیے نجمہ میں شاید اپنی بات مکمل نہیں کر سکا. میں نے جو آبادی کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے آپ کو ریزیڈینشل کالونیز چاہیے, ہاؤسنگ بھی چاہیے, ان کے لیے آپ کو سکولنگ چاہیے, ان کے لیے آپ کو کمرشل ایریاز چاہیے, بزنسز چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہیں نا جو کہ آپ کو آبادی کے ساتھ آبادی کے تناسب سے بڑھانی پڑتی ہیں. تو جب آبادی اتنی تیزی سے ملٹی پلائی ہو رہی ہوگی ایک ایسے ملک میں جس کے پاس لینڈ ویسے ہی بہت کم ہے, تو اس ملک میں ایگریکلچرل لینڈ کو ہی کمرشل لینڈ میں تبدیل کیا جائے گا کیونکہ اور تو کوئی راستہ ہے نہیں.
بالکل صحیح.
اور بعض ناقدین جو کہ اس بات سے اگری نہیں کرتے نجمہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ او جی بلوچستان میں اتنی زیادہ زمین پڑی ہوئی ہے اس کو آباد کر دیں, وچ از اے ویری لیم آنسر. بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے, کوئی پاکستان سے باہر تو نہیں ہے. بلوچستان کی زمین بنجر اس لیے ہے کہ وہاں پر اریگیشن کا نظام نہیں ہے, وہاں زراعت ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ بارشوں پہ منحصر ہے وہاں کا کاشتکار. لیکن اگر آپ اریگیشن سسٹم کو وہاں پہ پہنچا دیں تو اس کو آپ ایگریکلچرل لینڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن 20 کروڑ کی آبادی جس دن 40 کروڑ کی ہو جائے گی اس دن بلوچستان بھی ناکافی ہو جائے گا.
بالکل ایسا ہی ہے.
اور اسٹیٹ بینک کے فگرز نجمہ یہ کہتے ہیں, سوری اسٹیٹ بینک نہیں ورلڈ بینک کے فگرز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 2050 تک 40 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی. جس سپیڈ سے ہمارے ملک میں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, اگر اسی سپیڈ سے آبادی میں اضافہ ہوتا رہا تو یہ ہوگا. بہرحال ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. وقت ہے کہ آپ کے لیے آج کے پروگرام میں جو سٹوری ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ سٹوری پلے کی جائے. اور یہ سٹوری یہاں امریکہ میں یونیورسٹیز انوائرمنٹ فرینڈلی کیسے بنا رہی ہیں اپنے آپ کو گرین کیسے کر رہی ہیں, اس پر یہ ایک پیکیج ہے جو ہماری کالیگ نیلوفر مغل نے تیار کیا ہے. آئیے یہ سٹوری سنتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
امریکہ میں ماحول کے تحفظ کا بڑھتا ہوا رجحان اب امریکی یونیورسٹیز میں بھی واضح دکھائی دے رہا ہے. اور امریکہ بھر میں 300 سے زائد یونیورسٹیز ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں. ان یونیورسٹیز میں عمارتوں کو ماحول دوست بنانے کے علاوہ شمسی توانائی کا بہتر استعمال اور باغوں میں پودوں اور پھولوں کی کاشت وغیرہ جیسے سلسلے یقینی بنائے جا رہے ہیں, جبکہ ان درسگاہوں میں ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے نصاب کا بھی آغاز کیا گیا ہے. امریکی دارالحکومت کی جارج واشنگٹن یونیورسٹیز میں اسٹرابریز پک کر تیار ہو چکی ہیں. سورج مکھی کے پھول بھی اپنی بہار دکھا رہے ہیں. ایلوئی اسمتھ اس یونیورسٹی کی طالبہ ہیں اور یونیورسٹی کے اس باغ کی دیکھ بھال کرتی ہیں.
And then these are the little squash blossoms. You pick the male ones.
اس پودے کو اسکواش بلاسم کہا جاتا ہے. آپ پودا توڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ سبزی نہیں دیتا. یہ باغ یونیورسٹی کے ان دو باغوں میں سے ایک ہے جنہیں رضاکار طالب علموں نے تیار کیا ہے, لیکن یہ باغ اس ماحولیاتی تحفظ کا ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے جس کے حوالے سے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کام کر رہی ہے. یہاں پر نئی عمارات ماحولیات کے تحفظ کو مد نظر رکھے ہوئے بنائی گئی ہیں. چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال اور ماحول دوست چھتے بنانے کے علاوہ یونیورسٹی ٹی وی اور ملٹی میڈیا پر طالب علموں کو ماحولیات کے تحفظ کے بارے میں آگاہی بھی دیتی ہے. میگن چیپل ماحولیات کے تحفظ کے شعبے کی انچارج ہیں.
Climate, water, and ecosystems. And we have begun to create projects on the ground that address
climate change. ہم نے یونیورسٹی کی 3 عمارتوں میں شمسی توانائی سے پانی گرم کرنے کا نظام لگایا ہے جو امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں ایسا سب سے بڑا سیٹ اپ ہے. ان کا کہنا ہے کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے یونیورسٹی نے 10 سال پہلے کوششیں شروع
کیں.
ہم نے موسم, پانی اور ایکو سسٹم کے حوالے سے ماحولیات کے تحفظ کے لیے یہ سارے پروجیکٹ شروع کیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاربن کے اخراج کو کم سے کم کر سکیں. بارش کے پانی کو یہاں نہ صرف مقامی پودوں کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ بارش کا یہ پانی مقامی دریا پوٹامک کی طرف زیادہ نہ جائے. چیپل براؤن بتاتی ہیں کہ 20,000 طالب علموں پر مشتمل یہ یونیورسٹی اب ماحولیات کے بچاؤ اور حفاظت کے لیے 140 سے زیادہ کورسز مہیا کر رہی ہے. ان کے مطابق طالب علموں نے یونیورسٹی کو ماحول دوست بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ہم یونیورسٹی کو ماحول دوست بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے اور ہمارے طالب علم بھی اس حوالے سے تجاویز دیتے رہتے ہیں. ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم دا سسٹینیبل انڈاؤمنٹ انسٹیٹیوٹ کے مطابق امریکہ میں ہائی اسکول کے بعد کالج کا چناؤ کرتے وقت 2/3 طالب علم ان درسگاہوں کا انتخاب کرنا پسند کرتے ہیں جو ماحول دوست ہوں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی آپ نے سنا نیلوفر مغل کی زبانی کے امریکی یونیورسٹیاں اپنے آپ کو انوائرمنٹ فرینڈلی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو گرین کرنے کے لیے. گرین سے مراد بہت سارے سننے والے یقیناً جانتے ہوں گے, لیکن جو نہیں جانتے ان کو بتا دیں کہ امریکہ میں یا دنیا بھر میں گرین کی ٹرم, جو گرین فرینڈلی کی جو ٹرم ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے ماحول دوست کے طور پر. تو بہت سی یونیورسٹیز اپنے آپ کو ماحول دوست کر رہی ہیں اور یہاں امریکہ میں اس قدر یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ طالب علم جب یونیورسٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں اپنی فردر اور ہائر اسٹڈیز کے لیے, تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان یونیورسٹیز کا ماحول کیسا ہے, وہ کتنی انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, وہاں پر کس قسم کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں ماحولیات کو بچانے کے لیے, اور کیا وہ انرجی ویسٹ کرتے ہیں, کیا وہ انرجی فرینڈلی ہو گئی ہیں. یعنی بہت ساری جو عمارتیں ہیں وہ بہت پرانی ہیں نجمہ, اس لیے وہاں پر انرجی کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ ان کی کھڑکیاں دروازے اس قسم کے تھے کہ وہ شدید موسم کا مقابلہ اتنا اچھا نہیں کر سکتے تھے. تو بہت سی عمارتوں نے, یونیورسٹیز نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, یعنی جو یہ کہہ لیجیے جو ہیٹنگ اور کولنگ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کو بہتر کیا, کھڑکیاں دروازے نئے اور جدید ٹیکنالوجی کے لگائے جو کہ باہر کے موسم کی شدت کو زیادہ سے زیادہ روکنے میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو بہت زیادہ لوگوں کو اس وقت کہہ لیجیے کہ فکر مند ہیں وہ لوگ موسم کی بڑھتی ہوئی شدت کے حوالے سے.
جی عاطف, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں کی جو پرانی عمارتیں ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور انہیں لیکن اس کے برعکس اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے یہاں بہت ساری ایسی پرانی عمارتیں मारते हैं जिनको देखने का इत्तेफाक हुआ, और उनकी मैं वेंटिलेशन से उनके जो है वो देखकर मैं हैरान रह गई कि वो उस वक्त के आर्किटेक्ट जो थे या बनाने वाले जो थे उन्होंने किस कदर अच्छे तरीके से उनको उन इमारतों को बनाया था। और उनकी दीवारें बहुत मोटी रखी जाती थी ताकि सर्दी और गर्मी का जो मुकाबला किया जा सके। और इसके अलावा इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह का होता था किसी भी बिल्डिंग का जो भी इमारत बनाई जाती थी कि वहां पर दरख्तों का बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखा जाता था कि यहाँ पर पौधे और दरख्त लगाए जाएं ताकि वो पूरा, इवन अगर हम छोटे से छोटा घर भी किसी गांव में देखते थे तो वहां पर एक आध दरख्त लाजमी होता था। शहतूत ले लें आप या कोई मतलब जो है जैसे नीम का दरख्त है या कुछ इस तरह का कोई ना कोई एक दरख्त, और वो किकर का हो गया किसी भी टाइप का, लेकिन वो होता जरूर था उस सहन में एक आध दो दरख्त लाजमी होते थे जो कि उस घर की खूबसूरती के साथ साथ वहां की जो एनवायरमेंट है उसको भी वो क्लीन रखते थे। तो आजकल यहाँ पर जैसे हमने हाउसिंग स्कीम्स की बात की, तो जब मैंने जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स देखी है जब कॉलोनीज डेवलप हो रही होती है तो वहां पर इन चीजों को मद्देनजर रखा ही नहीं जाता, छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं वो वक्ती तौर पर कॉलोनी को खूबसूरत नजर आने के लिए, लेकिन परमानेंट बेसिस पे वहां पर प्लेसेस या जगह या जो स्ट्रीट्स हैं वहां पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया जाता कि इन फ्यूचर जो है वहां पे जो दरख्त हैं या जो पौधे हैं वो ग्रो भी करें और उसके बाद उस कॉलोनी को जो है वो कवर भी करें। तो ऐसा अभी मतलब यहाँ पे नई कॉलोनीज में ऐसा नहीं है, अलबत्त पुरानी इमारत में ये जरूर है।
आप ठीक कह रही हैं, और जैसा कि हम आज बात भी कर रहे हैं तो अपने सुनने वालों से भी हम कुछ इसी किस्म की बातचीत आज करना चाहते हैं लाइव कॉल्स के जरिए, और आप हमें टेक्स्ट करके भी अपने जवाब दे सकते हैं। तो आप जो लोग हमें सुन रहे हैं आज उर्दू voa.com पर और FM 96 पर साहिवाल फैसलाबाद और उसके गिरदो नवा में, आज तो आम लोगों से हमारा सवाल ये है कि आप अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है और ख़ासतौर पर माहौलियाती तब्दीली के हवाले से किस हद तक आप कनेक्ट करते हैं अपने आप को, या कंसर्न हैं आप इसके बारे में किस हद तक तशवीश रखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि नहीं, माहौलियाती तब्दीली जो है ना ये बस ऐसे ही साइंसदानों ने अपनी तरफ से इसको जनरेट कर दिया है, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। माहौलियाती तब्दीली शदीद सर्दी और शदीद गर्मी दोनों का नाम है, तो आप बताइए आप किस हद तक इसको दुरुस्त समझते हैं और उसके अलावा आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल्स दी नजमा के, दरख्त घर में जरूर लगाया जाता था, और फिर जैसे ये है कि छोटे छोटे पौधे जो हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कंजम्पशन जो है, जैसे हमने पहले जिक्र किया था, जैसे पानी की कंजम्पशन है उसको कंट्रोल कीजिए, और जो ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करते हैं हम, जिसमें हम कोयला जलाते हैं या गैस जलाते हैं या पेट्रोल का जो इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर हम कंट्रोल करना शुरू कर दें तो ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, और फाइनली इवेंचुअली वो ऐसे लेवल पर आ सकती है जिस लेवल पर होनी चाहिए। तो नजमा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का अगला गाना चलाएं, मेरा ख्याल है हम अपने सुनने वालों को वो नंबर्स बता दें जिन पर वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, और इस गाने के बाद हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे।
जी बिल्कुल लिस्नर, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे रब्ता नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं वो है 0404-111-96-0404-111-96। और अगर मैसेज करना चाहें तो मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर 96 लिखिएगा यानी 96 लिखिएगा, उसके बाद एक लफ्ज़ की खाली जगह स्पेस दे दीजिएगा, और उसके बाद अपना जो आप जो भी हमसे अपने जो ख्याल हैं वो शेयर करना चाहते हैं वो लिखिएगा, और अपना नाम और पता लिख कर उसे भेज दीजिएगा 8282 यानी 8282 पर। अभी एक सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं हम, और ये गीत सुनने के बाद आएंगे वापस, तो फिर आपको बताऊंगी कि साहिवाल में आते पे एक बहुत बड़ा जंगल था जिसको के तकरीबन 20 साल पहले तक वो आबाद था, लेकिन अब उसकी जो हालत है इसको मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले गीत सुनते हैं।
जरूर आप उसका जो जंगल का अहवाल है वो भी शेयर कीजिएगा। गाना हम आपके लिए चला रहे हैं जी, कैलाश खेर की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत आवाज है, बहुत ही नामवर सिंगर हैं, गाने का टाइटल है दीवानी। ये गाना सुनते हैं और इसके बाद आकर आपसे लाइव बात करते हैं। स्टे विद अस।
अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं,
तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी।
कैलाश खेर की आवाज़, जैसे मैंने गाने से पहले बताया था कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, और अब से कुछ दिन पहले हम इनकी बात भी कर रहे थे जब हमने असरार का एक गाना प्ले किया था अपने प्रोग्राम में, और उनकी आवाज़ का जिक्र करते हुए मेरा ख्याल है मैंने यही कहा था कि कैलाश खेर से उनकी आवाज़ बहुत मिलती है, और अगर आपको दोनों आवाज़ें याद हों नजमा तो यकीनन उनकी आवाज़ बहुत मिलती है। और कैलाश खेर देखने में तो बड़े छोटे से धानपान से हैं, लेकिन आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही वो हाई पिच आवाज़ जिसको कहा जाता है, बहुत ही हाई पिच आवाज़ है इनकी।
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है हमारा मेरा हाल दूसरा या तीसरा प्रोग्राम था जिसमें हमने इसरार, तीसरे प्रोग्राम में हमने इसरार को जो प्ले किया था, और उसने हमने जिक्र किया था कैलाश खेर का आवाज की रिजेम्बलेंस भी है, और इसके अलावा अंदाज भी, और फिर उनका वो एक सूफियाना स्टाइल, यानी इनकी आवाजों में एक सूफियाना जो एक तर्ज है या वो जो एक अंदाज है वो झलकता है इनकी गायकी में, और वो गीत कोई भी हो लेकिन उसके अंदर जो वो एक तसव्वुफ का आप कह लें कि एक समय भी नजर आता है, तो वो यकीनन इनकी आवाज की खूबसूरती का एक जो है हिस्सा है। जी
बिल्कुल है। तो नजमा, मेरा ख्याल है अपने कॉलर्स की जानिब भी बढ़ा जाए, आप अगर हमें कॉल करना चाहें आज के प्रोग्राम में तो कॉल कीजिए, और उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करना चाहता हूं। और नजमा, जब भी हम कॉल्स लेना चाहें आप मुझे रोक कर कॉल्स की तरफ जा सकती हैं।
मैं आपको रोकने वाली हूँ क्योंकि कॉल आ चुकी है।
जरूर।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
अच्छा, इन्होंने तो अपना रेडियो बहुत ऊंचा किया हुआ है, इनसे पहले तो ये गुजारिश है कि अपने रेडियो की आवाज आस्ता करते हैं।
अपने रेडियो की आवाज पहले कम कीजिए और फिर बताइए कि आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी, आप कहां से बात कर रही हैं रुखसाना? कमालिया से। जी रुखसाना, जी आतिफ, रुखसाना हमारे साथ हैं कमालिया से। और अब आप जो है आज के हवाले, जो हमारा टॉपिक है आज का मौजू, उसके हवाले से आप इनसे कुछ पूछिए।
जी रुखसाना, आपने हमारा आज का मौजू और टॉपिक तो सुना होगा, हम बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एक चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग, और आप इस मसले से निमटने के लिए आपके ख्याल में क्या कर सकती हैं?
बहुत अच्छा,
मालूम नहीं। चलिए रुखसाना, फिर आप प्रोग्राम सुनिए, मालूमात हम आपको देंगे।
चलिए ठीक है जी, आप सॉन्ग सुनिए और अपने मोबाइल पे सुनिए, हमें हमारा प्रोग्राम आप जो है अगर टाइम मिले तो जरूर सुनिएगा, गाने आप अपने मोबाइल पे सुन सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी।
मेरा ख्याल है जी,
जी यहाँ पे ये है हमारे लिसनर्स जो हैं वो, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, जो हमारे साइलेंट लिसनर्स होते हैं वो प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से सुन भी रहे होते हैं, और मैंने बाज़ औक़ात देखा है कि जब प्रोग्राम के बाद यानी कहीं इंटरेक्शन होता है तो वो लोग इसको जो है वो बताते हैं कि जी हमने आपका प्रोग्राम सुना और उसमें ये, तो मैं उनसे अक्सर यही कहती हूँ कि जब आप सुन रहे होते हैं तो उस वक्त हमें आपकी ज़रूरत होती है, आपके ख्याल की, आपके फीडबैक की, क्योंकि उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ डिलीवर कर रहे हैं, क्या वो सही आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत जरूरी जो है होता है कि जब प्रोग्राम के दौरान में हमारे लिसनर्स हमें सुनते हुए अपने ख्यालात का इजहार करें हमारे राबता नंबर पे, तो ज्यादा बेहतर है।
बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप नजमा, और रुखसाना कह रही थी कि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर सकती हैं। तो रुखसाना, अगर आपको नहीं पता तो एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आप क्या कर सकती हैं। ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल बंद कर दें। जो आप ये नॉर्मल जो परचून की ख़रीदारी करने जाते हैं या सब्जियां खरीदने जाते हैं या जब भी आप बाज़ार जाते हैं और वो सामान जो आप ख़रीदते हैं उनको आप प्लास्टिक बैग्स या जिनको पाकिस्तान में उर्फ़े आम में शॉपर्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल बंद कर दें, उनमें सौदा लेकर डालना बंद कर दें। आपको पता है कि अमेरिका की बाज़ रियासतों ने नजमा उन कस्टमर्स पर या कंज्यूमर्स पर जो प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सौदा सेल्फ के लिए, सामान के लिए, उन पर बैग 5 सेंट का इजाफी चार्ज आयद कर दिया है। और ये वाशिंगटन में भी ऐसा होता है जहां हम रहते हैं, जहां से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यहां पर अगर हम किसी स्टोर में जाते हैं और उनसे शॉपिंग बैग्स लेते हैं तो पर शॉपिंग बैग वो स्टोर रियासत के कानून के मुताबिक 5 सेंट इजाफी चार्ज करेगा उस शॉपिंग पर। 5 सेंट कहने में बहुत छोटे हैं अमेरिकी डॉलर का अगर मुवाजना किया जाए करेंसी मार्केट में तो, लेकिन ये है कि आप ये कंसिडर करें कि वो लोग जो कि यहाँ डॉलर्स में स्पेंड करते हैं उनके लिए 5 सेंट काफी बड़ी चीज होती है। और वो 5 सेंट जो मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को, क्योंकि वाशिंगटन शहर जो है ये रियासत डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उन 5 सेंट्स को जो कंज्यूमर उसको अदा करता है प्लास्टिक बैग की मद में, उसको वो इस्तेमाल करता है। यहाँ डीसी के साथ एक दरिया बहता है, उसको पटोमिक रिवर कहा जाता है। तो द लोकल गवर्नमेंट सर्व्स दैट मनी टुवर्ड्स क्लीनिंग पटोमिक, उसकी सफाई के लिए, और उसको पटोमिक के अंदर जो लाइफ है उसको बेहतर करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है गुज़श्ता 3-4 साल में, उससे जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स नजमा हर साल वाटर रिपोर्ट और रिजर्वायर रिपोर्ट पब्लिश करती हैं और अपने कंज्यूमर्स को भेजती हैं, तो वो रिपोर्ट्स जो हर साल आती हैं उसमें बताया जाता है कि उससे पटोमिक के अंदर जो गंदगी थी वो कितनी कम हुई है ये पैसा दरिया पर लगाने की वजह से। तो हमारे यहाँ तो नजमा ये शॉपर्स जो है ना हमारे मुल्क में पाकिस्तान में, तो इनकी वजह से ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये ब्लॉक हो जाता है।
जी बिल्कुल आते, मैं यही बताने लगी थी कि यहाँ पर ये है कि हम जो शॉपिंग करते हैं तो वो शॉपिंग बैग ये शॉपर्स जो होते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं, फिर हम जब घर लेकर आते हैं तो इनको हम अपने डस्टबिन में फेंकते हैं, और जब डस्टबिन को फ्री करते हैं तो वो सारे शॉपिंग बैग अक्सर औकात मैंने देखा है कि खवातीन इकट्ठे करके जला देती हैं। वो अपनी तरफ से ये समझती हैं कि हमने इनको जो है सही ज़ाया कर दिया है और ये अब इनकी जो है इनका जो है वो नुकसान कम होंगे। हालांकि शॉपिंग बैग जब जलाते हैं आप तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन पैदा होती है और वो जो धुआं होता है वो उससे ज्यादा खतरनाक होता है। और खाली शॉपिंग बैग अक्सर ड्रेनेज सिस्टम को भी बंद करते हैं। इसके अलावा जब आंधी या हवा तेज आती है तो उस वक्त वो उड़कर बहुत सारे जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं बाइक्स वगैरह पर तो उनके वो मुंह पर भी लगते हैं, आंखों पे को, मतलब एकदम से जब आप अचानक कोई चीज आपके मुंह पर आकर लगेगी तो यकीनन आपकी जो देखने की सलाहियत है आंखें आप एकदम बंद करेंगे। और उससे क्या होता है कि खुदा न खास्ता बाज औकात कुछ माइनर या सीवियर किस्म के एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इनके बहुत सारे मतलब जो है ना वो नुकसान हैं इन शॉपिंग बैग्स के, लेकिन यहाँ पर चूंकि अभी इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ पर जो सौदा सलफ खरीदने के लिए या लाने के लिए कोई खास इंतजाम, जैसे कि पहले अगर हम आज से पहले 25-30 साल पहले बात करें या हम अपने पुराने ड्रामों में भी देखें तो थैले इस्तेमाल किए जाते थे कपड़े के, तो वो घरों में जो खवातीन थी वो थैले खुद सिया करती थी और वो अपने जो अपने मर्द हजरात होते थे वो चूंकि ज्यादातर मार्केट्स में जाते थे तो उन थैलों में वो जो है खरीदारी करके लाते थे, और आटे का जो थैला होता था उसको भी यूज किया जा सकता था। तो अब ये चीजें चूंकि हम आराम पसंद हो गए हैं काफी ज्यादा, तो हम उन सहूलत पसंद आराम पसंद होने की वजह से बहुत सारी सहूलतों को हम अवेल करते हैं लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स को हम ना देखते हैं और ना ही उनको समझते हैं।
दुरुस्त कह रही हैं आप नजमा, और आपने जो डीकम्पोजिशन की बात की ना, उसी चूंकि हम प्लास्टिक बैग्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक प्लास्टिक बैग को डीकम्पोज होने में सैकड़ों साल लगते हैं। वो पड़ा रहता है जमीन या मट्टी के नीचे, और शर्त यह है कि वो मट्टी के नीचे पड़ा हो तब वो डीकम्पोज होगा और सैकड़ों सालों में डीकम्पोज होगा। उसके मुकाबले में जैसे आपने जिक्र किया कि जी जो कपड़े के थैले होते हैं, चूंकि नॉर्मली कपड़ा कॉटन से प्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिफिशियल जो थ्रेड होता है वो भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो जल्दी डीकम्पोज हो जाता है क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है, इसलिए वो जल्दी डीकम्पोज हो जाता है। और आपने जैसे जिक्र किया कि जी घर की खवातीन थैले सिया करती थी, तो मुझे भी याद है, मेरे उम्र में ही मुझे याद है कि हमारी अम्मी जो जुम्मा बाजार से हमने सौदा सेल्फ लाना होता था हफ्ते के हफ्ते, ताज़ा सब्जी और फल जो खरीद के लाना होता था, उसके लिए उन्होंने थैले सी के दिए हुए थे, उन्हीं थैलों में वो सारी की सारी खरीदारी जब हो जाती थी तो उन्हीं थैलों में वो चीजें डलवा के वापस लाई जाती थी, और बड़े खूबसूरत खूबसूरत थैले देखने को नजर आया करते थे। और उसका एक अपना हुसन है नजमा के मुख्तलिफ पैटर्न्स के, रंगों के, लाइनों के, फूलों के थैले आपको नजर आते हैं।
जी सॉरी मैं इंटरप्ट, मैंने इसलिए किया, ये थैलों की बात आप कर रहे थे कि खूबसूरत नजर आते हैं, तो उसके अलावा भी एक और एस्पेक्ट भी होता था इसके पीछे। माएँ, हमारी जो माएँ और दादियां नानियां थी वो ये कहती होती थी कि जो चीज आप ला रहे हो घर में तो वो नजर ना लगे, उसको किसी की नजर ना लगे।
हाँ, वैसे ये भी
वो थैलों में कवर होके आती थी,
ये भी है, बिन बुलाए मेहमान भी नहीं आते थैलों में अगर चीजें नजर नहीं आ रही तो। माशाल्लाह पाकिस्तान में फल सब्जियों का जायका इतना अच्छा है कि उसका कोई जवाब नहीं है, और मौसमी फल जब आते हैं तो बहुत ही जायकेदार होते हैं, सब्जियां बहुत खुशबू वाली और बहुत जायकेदार होती हैं। तो जो दोस्त अहबाब होते हैं वो कोई अपनी मनपसंद सब्जी या फल आपके थैले में देख के बिन बुलाए घर भी आ सकते हैं कि चलो आज फिर पालक पका के खिलाओ ताजी, है जी। तो यकीनन, और वैसे यहाँ पर अमेरिका में, मैं बार बार अमेरिका में इसलिए कहता हूँ, अपने सुनने वालों को भी बताता चलूँ कि मैं कंपैरिजन इसलिए करता हूँ कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, इसलिए मैं आपको अमेरिका के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना चाहता हूँ, उसमें जो अच्छी बातें हैं वो भी बताना चाहता हूँ, जो अच्छी बातें नहीं हैं वो भी बताना चाहता हूँ। और यही थैलों से याद आया कि अमेरिका में ये थैले जो कपड़े के थैले होते हैं, पाकिस्तान में तो हम खुद घर में सी सकते हैं ना जी, अमेरिका में ये कपड़े के थैले बाजार में बेचे जाते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप ये कपड़े का थैला खरीदना चाहेंगे, और कपड़े का जो थैला है वो $1-2 से लेके $5-10 तक का भी बिकता है। मतलब उसमें फिर फैंसी थैले भी आ जाते हैं, उसमें फिर मखसूस किस्म के ऑर्गेनिक थैले भी आ जाते हैं, तो ये भी इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस है। लेकिन हमारे यहाँ ये काम जो है वो खवातीन گھر میں خود ہی کر لیا کرتی تھیں, اور ہم نے پتہ نہیں کیوں اس کپڑے کے تھیلوں کو چھوڑ کے پلاسٹک بیگز کی طرف جانا شروع کر دیا, اور سوچا کہ اچھا جی پلاسٹک بیگ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ بالکل بالکل ہرگز اچھا نہیں ہے, اس کو اس کی ڈی جنریشن میں پرابلم ہے. اور پھر ریسائکلنگ اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے نجمہ, جب ہم ماحول دوستی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ کانچ, پلاسٹک اور کاغذ یا گتے کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں یا لکڑی کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ریسائکل کرنا چاہیے. پاکستان میں ایک کاروبار ہوتا تھا کباڑ کا کاروبار, تو وہ کباڑیے کے پاس نا لوگ مختلف اس قسم کی چیزیں جو ریسائکلیبل تھیں, ری یوزیبل تھیں, ان کو اکٹھا کر کے کباڑیے کو دے دیا کرتے تھے, اور پھر کباڑیے آگے دوبارہ ملز کو جو پروڈیوس کرتی تھیں کانچ یا ٹین یا اس قسم کے مٹیریل کی بنی ہوئی چیزیں, ان کو آگے دے دیا کرتے تھے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ پاکستان میں ابھی بھی موجود ہے, لیکن لوگ شاید چیزیں پھینکتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتے کہ اس کو ریسائکل کیا جا سکتا ہے. امریکہ میں ہی کچھ سٹیٹس ایسی ہیں جو کہ یہ جو جوس اور سوڈے کی بوتلیں ہوتی ہیں نا جی, ان کو واپس کرنے پر بھی 5 سے 10 سینٹ پر بوٹل وہ پے کرتی ہیں. تو یہاں پر بھی لوگ انفرادی طور پر تو ان کو جمع کر کے بیچتے نہیں ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ گاربیج کینز سے, اور جو اس طرح کے کنزیومر گاربیج کینز ہوتے ہیں جو مارکیٹوں میں یا دفاتر کے آس پاس لگے ہوتے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ یہ کچرا یہاں پہ بھی چن رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ ظاہری بات ہے بےچارے بہت ہی غریب لوگ ایسے جن کو یہاں ہم زیادہ تر ہوملیس لوگوں کے نام کے طور پر جانتے ہیں, جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اور وہ سڑکوں یا فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں, اور ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہوتی, اس لیے ان کے لیے یہ ایک انکم جنریشن سورس بھی ہوتا ہے. تو وہ یہ بوتلیں جمع کر کے جا کے بیچ دیتے ہیں, اور 5 سے 10 سینٹ پر بوتل ان کو پیسے ملتے ہیں یہ ریٹرن کرنے کے.
ویری گڈ. اچھا آتف, آپ نے بات کی جیسے کہ شاپنگ بیگ کی, تو مجھے ایک بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات میں بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر جب ہم ہیلتھ کی, صحت کی بات کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں اکثر میں ہنسا کرتی ہوں کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, تو میں یقیناً اس بات پہ ہنستی ہوتی ہوں ہمیشہ کہ ایک چیز آپ سیل بھی کر رہے ہیں اور اس پہ آپ انٹریکشن بھی دے رہے ہیں اور اس پہ آپ جو وارننگ بھی دے رہے ہیں, تو یہ ایک مزاحیہ سی بات لگتی ہے. اور اسی طرح جب ہم میڈیکل اسٹورس یہاں پر ہیں, ابھی تو خیر تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے کہ جو کاغذ کے یا اس طرح کے بنے ہوئے تھیلیاں جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں کچھ اچھے میڈیکل سٹورز پہ, کہ وہ لوگ اس میں میڈیکیشن جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, دوائیاں جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پر تو آپ کو پتا ہے تھوڑا سا لوز میڈیکیشن کا بھی چکر ہے کہ ٹیبلٹس کارڈ دینی اور یہ اور وہ, اور وہ کٹی ہوئی ٹیبلٹس یا وہ جو ایون کھلے ہوئے کیپسولز جو ہوتے ہیں جو وداؤٹ کور ہوتے ہیں, ان کو بھی اس شاپنگ بیگ میں ڈال کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں پیشنٹ کو. تو اب آپ سوچیں کہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جب وہ میڈیسن ایک تو آلریڈی ہی اوپن ہے, کھلی ہوئی ہیں, اور اوپر سے ان کو جو ہے وہ ہائیجینک سسٹم تو ان کا خیر گیا باہر میں, اور اوپر سے ان کو اس شاپنگ بیگ میں دیا جا رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ وہ مریض تک پہنچتے پہنچتے اس دوائی کا جو ہے کیا حال ہو چکا ہوگا اور وہ افیکٹو کس قدر رہ گئی ہوگی. لیکن یہاں پر چونکہ ماشاء اللہ ہمارے ہاں جو ہے ریزسٹنس جو ہے وہ بہت اچھی ہے, آپ کہہ لیں کہ ہیومن ریزسٹنس بہت اچھی ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابزاربیبل ہیں, اور میں حیران ہوتی ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ شاید ہی ہمارے پاکستان کا بہت اچھا ایٹماسفیئر ماحول ہے, یا پھر اس کے علاوہ یہاں کا پانی جو ہے وہ بہت اچھا ہے, کہ ہم جس قدر ہم چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, صفائی کو اگنور کرتے ہیں, ہم اس یہ جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کو ہم اگنور کرنے کے باوجود بھی یہاں ماشاء اللہ ہیلتھ جو بہت سارے لوگوں کی بہت اچھی ہے.
جی بالکل, اور خدا کرے کہ لوگوں کی صحت ہمیشہ ہی اچھی رہے. جیسے ہم نے بہت ساری چیزوں کی بات کی, تو وہیں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی الارمنگ ہیں نجمہ. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دنیا بھر میں سی لیولز یعنی سطح سمندر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور گزشتہ چند سالوں کے دوران جو سطح سمندر ہے دنیا بھر میں وہ تقریباً 6.7 انچ تک بلند ہو چکی ہے, اور اگر یہ اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو چند ممالک ایسے ہیں جن کو بہت سخت خطرہ لاحق ہے. ان میں سے ایک ملک ہمارے خطے کا ملک ہے جو کہ ہے مالدیوز, مالدیپ بھی کہا جاتا ہے جس کو. اگر یہ اسی طرح سے سطح سمندر بلند ہوتی رہی تو مالدیوز پورا ملک جو ہے یہ ڈوب جائے گا, پانی کے نیچے آ جائے گا. اور
جی جی عاطف ایک کالر ہیں, اگر آپ کہیں تو ہم پہلے کال سنیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. जी अल्लाह का शुक्र, कौन बात कर रहे हैं? आतिफ, आप तक सलाम पहुंचा है
जी। वालेकुम अस्सलाम।
और ये एमबीबीएस बात कर रहे हैं।
अच्छा, मैं इनका नाम सही तरह से नहीं सुन सका।
ये मुन्ना है जी, हमारे यहाँ साहिवाल से बात कर रहे हैं।
अच्छा जी, बिल्कुल, इनसे पिछले हफ्ते भी बात हुई थी। मुन्ना साहब, क्या हाल है आपके?
जी मुन्ना, क्या कहना चाहेंगे आप आज?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने, उम्मीद है कि प्रोग्राम आज का शुरू से सुना होगा।
माफ किया।
तो जनाब मुन्ना साहब, आप क्या कर सकते हैं अपने मुल्क में माहौलियात को बेहतर करने के लिए?
आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोशिश क्या है और क्या करना चाहेंगे?
मैं यही करना चाहता हूँ कि मेरी यही कोशिश है कि माहौल हमारा साफ सुथरा हो जाए।
कैसे हो जाए? मैं झाड़ू लेके साफ करेंगे
या फूके मार के साफ करेंगे?
लोगों का तो दिल साफ हो जाए
तो माहौल हो। ओहो, आप शायद
ये तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप ले गए हैं डिस्कशन को। मुन्ना साहब, मसला ये है कि वो माहौल जो है ना, जो दिलों का माहौल है और नियतों का माहौल है, वो तो यकीनन सेल्फ क्या कहते हैं, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया है, वो लफ्ज निकल गया है, वो यानी अपने आप को बेहतर करने से, अपनी अना को खत्म करने से, अपने आप को अपने अंदर झांकने से बेहतर होगा। लेकिन वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, उसको बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसको बेहतर करने के चंद तरीके हमने जो बहुत छोटे छोटे और बहुत ही बेसिक हैं, जो कि इनफरादी तौर पर किया जा सकता है, उनका जिक्र किया था। जैसे ये कि पानी का इस्तेमाल बहुत एहतियात से कीजिए, पानी को जाया ना कीजिए, अपने इर्द गिर्द जो दरख्त लगे हैं उनको ना काटिए बल्कि उनमें इजाफा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाइए। इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें, कोशिश करें कि आप प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मतलब जरूरत के मुताबिक आप यकीनन, अब जैसे ट्रैश बैग्स हैं वो प्लास्टिक के ही हो सकते हैं, तो वो ठीक है, उसका इस्तेमाल जायज है। लेकिन बिला वजह अगर आप, जैसे हमने जिक्र किया था, अभी नजमा ने भी जिक्र किया था, कि वो जो कपड़े के थैले होते हैं खूबसूरत खूबसूरत से, कोशिश करें कि प्लास्टिक बैग्स की जगह उनको इस्तेमाल करें।
जी मुन्ना, बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके तो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं माहौलियाती आलूदगी को दूर करने में। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। खुश रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। अल्लाह हाफिज। जी आतिफ, हमारे पास एक मैसेज भी है और ये मैसेज हमें किया है जी, किन्होंने किया? अदनान ने किया, और ये कहते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करके ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। अगर माशरती मसाइल भी डिस्कस किए जाएं तो आम आदमी को भी काफी फायदा होगा। जी बिल्कुल अदनान, हम माशरती मसाइल जो हैं, सोशल इश्यूज जो हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम्स आप रेगुलर सुनते रहिए तो उसमें इंशाल्लाह ये सब चीजें होंगी। ये तो आपने वो बात की है ना कि गोल सी बात कर दी है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो हमें करना है, असल में बात ये हो रही है कि पॉल्यूशन जो है एक हिस्सा है ग्लोबल वार्मिंग का, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसमें हम अपना किरदार हमारा क्या हो सकता है, इसका हमने आपसे पूछा था। लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया और अपनी हमें कुछ सजेशन दी, तो इंशाल्लाह हम इस पे भी अमल दरामद करेंगे। जी।
नजमा, अभी जब आप बात कर रही थी तो मुझे शहजाद ने खिड़की के दूसरी तरफ से बहुत ही अहम फिगर्स बताए, और उनकी रिसर्च के मुताबिक हम लोग हर एक मिनट में 1 मिलियन बैग्स इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में जो कंज्यूमर है वो 1 मिनट में 1 मिलियन यानी 10 लाख प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल कर रहा है। और अगर हम इन सारे प्लास्टिक बैग्स को जोड़ दें तो हम दुनिया भर के गिर्द तकरीबन 4200 मरतबा इसको लपेट सकते हैं दुनिया के गिर्द। और इसी तरह नजमा, हम जो प्लास्टिक बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं ना पानी के लिए, अगर हम उन सारी बोतलों को जमा करें तो एक साल में हम जितनी बोतलें इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए, जिनको पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको भी दुनिया के गिर्द कई मर्तबा लपेटा जा सकता है।
अच्छा, आपने बोतलों की बात की तो मुझे याद आया कि पिछले दिनों, कुछ अरसा पहले, मैंने एक जो है फेसबुक पर या शायद कहीं किसी पेज पर एक पिक्चर देखी, पिक्चर क्या बल्कि छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें एक कोई अंग्रेज खातून थी जिन्होंने ये प्लास्टिक की बॉटल्स से पूरा घर बनाया था, और वो बड़ा उन्होंने कटिंग शटिंग करके और बड़ा खूबसूरत सा एक घर बनाया था, तो वो देखने में तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जब हम प्लास्टिक को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो कहीं दूसरी तरफ घर भी बनाए जा रहे हैं।
जी हाँ, वो उसको उसका रीयूज है नजमा, उसको रिसाइकिल किया जा रहा है बुनियादी तौर पर, और यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे शुरू किए गए हैं जिसमें ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या पानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इन बोतलों को रीसाइकिल करके यानी डीजेनरेट किया जाता है, और फिर रीसाइकलिंग के बाद ये जो मुख्तलिफ पब्लिक पार्क्स में बेंच लगे हुआ करते थे ना, ये इन बेंचेस को अब उस प्लास्टिक से बनाना शुरू कर दिया गया है। उन बेंचेस पर लकड़ी और लोहे के बजाय ये प्लास्टिक को रिसाइकल करके इसके जरिए वो बेंचेस बनाना शुरू कर दिए गए हैं, और ये एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है खासतौर पर अमेरिका में। बहुत सारी लोकल गवर्नमेंट्स, काउंटीज, रियासतें और शहर अपने जो पब्लिक पार्क्स हैं उनके अंदर अब प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी हुई चीजें लगाना शुरू कर रहे हैं, ताकि नया प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बजाय वो प्लास्टिक जो इस्तेमाल करके फेंक दिया गया था उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। नजमा, प्रोग्राम के खत्म होने में 4 मिनट बाकी रह गए हैं, लेकिन आज की जो डिस्कशन थी नजमा, इट वॉज अ वेरी हेल्दी एंड यूजफुल डिस्कशन। आपने बहुत सी मालूमात शेयर की वॉइस ऑफ अमेरिका के सुनने वालों के साथ, हमने बहुत सारी मालूमात शेयर की अपने सुनने वालों के साथ भी, साहिवाल में सुनने वालों के साथ भी, और आपकी मालूमात भी साहिवाल में सुनने वालों तक पहुंची, और उम्मीद सिर्फ इतनी की जानी चाहिए और मुझे भी यही उम्मीद है कि हम जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, एटलीस्ट उतना किरदार अपना अदा करें ताकि हमारे बाद की जनरेशन, यानी मेरे बाद की जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन, एटलीस्ट ये ना कहे कि आज से 50 साल पहले जो लोग इस दुनिया पर बसते थे, या आज से 3 जनरेशन पहले जो लोग इस दुनिया पर बसते थे, उन्होंने इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं की कि समंदर की सतह बुलंद हो रही है और दुनिया को इतने बड़े चैलेंज का सामना है। नजमा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहने का, तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, हमें कॉल किया, हमें मैसेजेस किए, हमें सुना। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के स्टूडियो से मोहम्मद आतिफ को, और FM 96 साहिवाल के स्टूडियो से नजमा को। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको एक गाने के साथ छोड़े जा रहा हूँ, और गाना है जी फलक बैंड का, फलक इज द नेम ऑफ द सिंगर एक्चुअली, और इनका गाना है इजाजत। तो ये गाना सुनिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔